ओम शांति। आज के प्रातःकालीन सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगी भ्राता डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। एक हाथ हिलाकर भ्राता जी का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आप दिल्ली की धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं। पिछले 38 वर्षों से आप राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे हैं और पिछले 28 वर्षों से आप हेडक्वार्टर में रहकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कैड रिसर्च प्रोजेक्ट के आप डायरेक्टर हैं। वर्तमान में भी कैड का प्रोजेक्ट प्रोग्राम नीचे चल रहा है, उसमें से समय निकालकर आपके बीच में आए हैं और इस कैड प्रोग्राम के जरिए आपने हजारों की संख्या में दिल के मरीजों को ठीक किया है और इसी कारण से दिल वाले डॉक्टर सतीश गुप्ता के नाम से आपकी प्रसिद्धि हुई है। तो ऐसे हमारे दिल वाले डॉक्टर सतीश गुप्ता जी, हमारा ईश्वरीय पढ़ाई का जो पहला लेसन है, जो पहला अभ्यास है देही अभिमानी बनने का, उस पर प्रकाश डालेंगे। देही अभिमानी स्थिति कैसे अपनी मेंटेन करनी है, सुनते हैं भ्राता जी से। आदरणीय भ्राता जी,
ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चों को हम बार बार मुरली में सुनते हैं, लगभग रोज ही सुनते हैं, मीठे बच्चे तो आपको देही अमानी बनने का अभ्यास करना है, देही अमानी बनने की पुरुषार्थ करना है, निरंतर देही अमानी बनने का अटेंशन रखना है। फिर बाबा कभी कभी शब्द आता है आत्ममानी शब्द, आत्म हमारी बनना है। फिर कभी कभी हम सुनते हैं विधेयी अवस्था के बारे सुनते हैं और कभी कभी हम अशरीरी अवस्था भी सुनते हैं, राइट, निराकारी अवस्था भी सुनते हैं और कभी कभी बीज रूप अवस्था भी सुनते हैं, राइट। तो आज हम इन बातों को गहरे समझेंगे, कुछ बातों को, सभी बातें तो नहीं, विशेष देही हमारी स्थिति क्या होती है और कैसे बनती है। सबसे पहली बात तो हम सबको बड़ा क्लियर होना चाहिए, जितने भी मनुष्य धरती पर हैं, कितने मनुष्य हैं धरती पर, 800 करोड़ है ना, 8 अरब मनुष्य हैं। कहाँ का ग्रुप है ये, हैं जी, मीरपेट सिकंदराबाद। तो लगभग 800 करोड़ मनुष्य हैं धरती पर और 800 करोड़ के 800 करोड़ देह अभिमानी मनुष्य हैं, ठीक है, देह अभिमानी है। और उसमें से लगभग 15 लाख बच्चे देही अभिमानी बनने का अभ्यास कर रहे हैं। देही अभिमानी का मतलब क्या है, मनुष्य का मतलब क्या है, मनुष्य का अर्थ क्या है, मन के वश में, मनुष्य माना मन के वश में, जो मन के वश में है, मन में जो भरा हुआ है वो आत्मा को भी उसने कंट्रोल कर लिया है। देवी देवता सत्य त्रेता में हम आत्माएं स्वराज्य अधिकारी हैं, आत्मा का राज्य है मन बुद्धि संस्कार पर, राइट, पांचों कर्मेंद्रियों पर, शरीर के 8 अंगों पर। आत्मा के पास 7 एनर्जी भरपूर हैं, इसलिए आत्मा सत्व प्रधान है। आत्मा सत्युग में आत्ममानी है, क्या है, आत्म अभिमान देते हैं, अर्थात आत्मा 7 गुणों से भरपूर है और बुद्धि भी मन भी संस्कार भी, तीनों ही 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से भरपूर था, सत्व प्रधान, संपूर्ण पावन सत्व प्रधान है। हमारी 5 कर्मेंद्रियां आंख नाक कान मुख और त्वचा भी संपूर्ण पावन सत्व प्रधान है और शरीर भी हमारा 5 तत्वों से बना हुआ, वो भी संपूर्ण पावन सत्व प्रधान है। बेसिक चीज के आत्मा सत्व प्रधान, संपूर्ण पावन सत्व प्रधान है, उससे बुद्धिमन संस्कार संपूर्ण पावन सत्व प्रधान है और उससे फिर शरीर का एक एक कोशिका संपूर्ण पावन, अर्थात एक एक कोशिका से सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं, ज्ञान तथा सत्य की समझ, पवित्रता, शांति, सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम, अतिंद्रिय सुख, आनंद और आठों शक्तियों का प्रवाह हर आदमी के आभा मंडल में, वायुमंडल में महसूस होता है। और गुणों में ही हम व्यवहार करते हैं। 36 सर्व गुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। जैसे सत्युग से हम त्रेता में आते हैं, ये सातों एनर्जी 16 कला से 14 कला, 14 कला मानो सातों एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है। उसमें भी क्या कम ज्यादा होता, कम क्या होता है, सत्य की समझ के स्वरूप तो रहते हैं, अर्थात ज्ञान स्वरूप तो रहते हैं, पवित्र स्वरूप भी रहते हैं, शांत स्वरूप भी रहते हैं, प्रेम स्वरूप भी रहते हैं, किंतु सुख और आनंद कम हो जाता है। क्या कम हो जाता है? सुख और आनंद कम हो जाता है। शक्ति भी रहती है पर सुख और आनंद की कमी हो जाती है, राइट। और जब धीरे धीरे और 12 जन्म लेते हैं तो आत्मा की एनर्जी और कम हो जाती है, और जब आत्मा की एनर्जी 50% से कम हो जाती है, क्या होती है, आत्मा की एनर्जी 50% से कम हो जाती है, तो क्या होता है, जब तक आत्मा की एनर्जी 50% से ज्यादा है, 51% है, तब तक तो आत्मा राजा है। कॉर्पोरेट में भी होता है ना, जो इंडस्ट्रीज होती है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस होते हैं, वहां पर क्या होता है, जिसका शेयर 51% होता है ना, 50% वो जो है उसका कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, वो मतलब एमडी होता है, राइट। तो सत्य त्रेता में कौन होता है, एमडी कौन होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है, आत्मा होती है। किंतु जैसे ही महामंत्री कौन रहता है, मन, महामंत्री या प्रधानमंत्री कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि आत्मा सारी एनर्जी मन के माध्यम से शरीर को देती है। मन के चार एस्पेक्ट होते हैं, इंग्लिश में कहते हैं टीम, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज, संकल्प, भावना, वृत्ति और स्मृति। आत्मा को जो भी देना है ना किसी शरीर को, आठों अंगों को, पांचों कर्म इंद्रियों को, किसके माध्यम से देती है, विचारों के माध्यम से, भावनाओं के माध्यम से, वृत्ति के माध्यम से और किसके माध्यम से, स्मृति के माध्यम से देते हैं, राइट। तो मन जो है, क्योंकि सुख सब कुछ आत्मा को देना किसके द्वारा, मन के द्वारा। तो मन कौन हुआ, प्रधानमंत्री। अब मुझे जैसे आपको कुछ देना है तो मैं कैसे दूंगा, आपको पेन देना है तो कैसे दूंगा, हाथ से दूंगा, हाथ है तो बॉडी का ही पार्ट, और आप कैसे लेंगे, अगर आपको लेना है तो आप इंटरेस्टेड हैं तो हाथ, आप ऐसे बैठे बैठे ले सकते हैं, हाथ से लेना पड़ेगा। ऐसी आत्मा, मन जो है आत्मा की एक सूक्ष्म शक्ति है, किंतु मन के माध्यम से ही आत्मा तक, बॉडी तक एनर्जी जाती है, राइट। बुद्धि यहां है, मन सारे शरीर में फैला रहता है, मन सारे शरीर में फैला हुआ है, और संस्कार हमारे जो चीज हम बार बार करते हैं ना, बार बार सोचते हैं, निर्णय सेम निर्णय करते हैं, वो उसके द्वारा फिर जो कर्म करते हैं वो हमारे संस्कार बन जाते हैं, और संस्कार हमारी ड्रेस बन जाती है, संस्कार हमारे चेहरे के द्वारा दिखाई देते हैं, हमारी चाल के द्वारा दिखाई देते हैं, हमारे चलन माना हमारे कर्मों के द्वारा दिखाई देते हैं, देखना, सुनना, बोलना, खाना पीना, बात करना, व्यवहार करना, लोगों से मिलना जुलना, चलना भी चलन है, राइट, उससे पता लगता है, ठीक है। ये बेसिक बात हो गई। तो बुद्धि यहां है, आत्मा यहां है, जहां आत्मा है वहीं पर बुद्धि है, और मन सारे शरीर में फैला हुआ, संस्कार हमारी ड्रेस है, जैसे बाहर से गुस्सा करते हैं तो संस्कार गुस्सा करने का है तो चेहरे से दिखाई देता है ना, इवन चाल से भी दिखाई देता है, बोल से भी दिखाई देता है, आंखों से भी दिखाई देता है ना, दिखाई देता है ना। अगर प्यार की, किसी का प्यार का संस्कार हो तो आंखों से भी प्यार दिखाई देता है, बोल से भी दिखाई देता है, और चाल से भी दिखाई देता है ना, इशारों से भी दिखाई देता है, वाइब्रेशन से भी दिखाई देता है, गुस्सा भी वाइब्रेशन से दिखाई देता है, महसूस होता है ना सामने वाले को। जो भी भावना हो, ईर्ष्या की भावना हो, कुछ भी हमारे अंदर गलत है ना, वो हमारे वाइब्रेशन दिखाई देता है। अब क्या हुआ, जब द्वापर युग आया, द्वापर युग आते क्या हुआ, अब आत्मा की एनर्जी 49% हो गई, जैसे द्वापर युग आया ना 50 से थोड़ा कम हुई ना, तो मन की एनर्जी कितनी हो गई, 51% हो गई। मन क्या बन गया, जिसकी ज्यादा शेयर है राजा कौन बनेगा, एमडी कौन बनेगा? अब मन राजा बन गया, मन आत्मा उसके वश में हो गई, राइट। मन में क्या भरा हुआ था, क्योंकि मन की मन का मन 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 था कनेक्टेड शरीर से, आंखों से, नाक कान मुख से, शरीर से। अभी तक सत्युग त्रेता में देहभान था, सत्य प्रधान देहभान था, देह अभिमान नहीं था। देहभान तो होता है ना कि देह है मेरे पास, तभी तो सजाते हैं, तभी थोड़ा बहुत सजते हैं, जो थोड़ा बहुत कपड़े पहनते हैं, गहने पहनते। तो अगर देहभान ना हो तो कैसे पहनेंगे, है ना। देह तो देहभान तो है, पर सत्य प्रधान देहभान है। और त्रेता में देहभान रजो प्रधान, सॉरी सतो है, सतो देवान। जैसे ही रजो प्रधान देवान आता है तो देह अभिमान आ जाता है। द्वापर के शुरू से ही देह अभिमान आ जाता है। देह अभिमान माना मन में देह अभिमान आ जाता है कि मैं स्त्री पुरुष का देह अभिमान आ जाता है, मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं। और पोस्ट का देह अभिमान, पर राजा प्रजा का भी अभिमान नहीं था, देह अभिमान नहीं था। राजा को यह नहीं था मैं राजा और ये मेरी प्रजा है, मेरे नीचे ये मेरी दासी है, ये मेरा दास है। ये रानी के अंदर भी नहीं था, प्रिंसेस के आपस में सहेली की तरह से, राजकुमारी और दासी भी सहेली की तरह से मित्रवत व्यवहार करते थे। राजा और रानी और प्रजा पुत्र और पुत्री की तरह से ना, मतलब हर प्रजा के व्यक्ति का, जैसे दादी है हमारी, दादी थी, बड़ी दादी थी, अभी भी दादी है, किंतु वो बड़ी दादी जो थी, दादी प्रकाशमणि, हर एक से कैसा व्यवहार था, बहन जी को तो पता है ना। कोई भी जाके मिले कितने प्यार से मिलती थी, जैसे हर बात उनको पूछती थी, हर बात, जैसे हर एक को वो कनेक्शन, जैसे दादी से हमारा कनेक्शन था ना, ऐसी प्रजा का कनेक्शन राजा से सत्युग में रहता है। उसकी मॉडल यहां पर है, था मधुबन में, जैसे ब्रह्मा बाबा सब कहते मेरा बाबा कहते ना, मेरी दादी, ऐसे वो ही कनेक्शन कहा था सत्युग में, राजा और राजा रानी और प्रजा के बीच में रहता है। हर एक आदमी ऐसा महसूस करता है, मेरा 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 मेरी मेरी रानी, है ना। ऐसे माता और माता का, जैसे कहते हैं ना मम्मा को माँ कहते हैं ना, और ब्रह्मा को पिता कहते हैं, तो माता पिता की सबको फीलिंग आती है, खाली उनके बच्चों को नहीं, हर एक को फीलिंग आती है, राइट। तो ये जब ये रजो प्रधान शुरू हुआ, रजो शुरू हुआ द्वापर में, तो देह अभिमान आया, मेल फीमेल का भाना है, मेल फीमेल का भानाते मन राजा बन गया, आत्मा उस देह भान और देह अभिमान में कबर दाखिल हो गई। कबर दाखिल माना पहले स्व समझते थे अपने को, अब ये क्या बन गया, शव के वश में। शव ना शरीर क्या, शव, और ये है शव, स्व है ना, स्व माने आत्मा और शव माना बॉडी शरीर, है ना। तो कबर है, ये कबर है ना, देह क्या है, कबर है, और आत्मा कबर में दाखिल हो गए हैं। तो हम अब भी आत्मा, कलयुग के अंत में भी आत्मा है, किंतु आत्मा का भान खत्म हो गया, राइट। क्या शुरू हो गया, देह अभिमान शुरू हो गया। देह भान तो था ही पहले, रजो प्रधान देह अभिमान हो गया, देह भान हो गया, और सतो प्रधान देह अभिमान आया। क्या आया, सतो प्रधान देह अभिमान, राइट। क्योंकि देह अभिमान की भी परिभाषा में बाबा ने कहा, रावण भी पहले सतो में आता है, फिर धीरे धीरे रजो होता है, फिर तमो होता है। तो उसके जैसे देह अभिमान आया ना, मेल फीमेल का भान काम विकार आ गया, आकर्षण देह की तरफ आकर्षण आया। उसके पहले हमारा देह में व्यवहार नहीं था, गुणों में व्यवहार, सत्युग में हमारा क्या था, गुणों में व्यवहार था, राइट। जैसे द्वापर आया तो देह अभिमान, देह शकल और अकल में व्यवहार आ गया, गुणों में व्यवहार खत्म हो गया, शकल और अकल में व्यवहार हो गया। तो जहां काम विकार आया तो मनुष्य बन, मनुष्य क्यों कहलाए, क्योंकि हम गिर गए थे और देवी देवता कहलाने, पवित्रता खत्म हुई, देवी देवता कहलाने लायक खत्म हो गए, और साथ साथ विनाश भी हुआ, साधन कम हो गए, और हमें क्या हुआ, देने की वृत्ति खत्म हो गई, और क्या हुआ, लेने की वृत्ति, देवता से क्या बने, लेवता बन गए। किससे लेवता, मनुष्य से लेवता नहीं, शुरू में पूजा की तो शिव से लेवता बने, है ना। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, व्यभिचारी की बजाय व्यभिचारी पूजा, तो फिर देवताओं से भी लेवता बने, खुद ही अपने चित्रों से लेवता बनने लगे। तो देह विमान आया, पहले काम विकार आया, फिर क्रोध आया, उससे कामनाएं पैदा हुई, इच्छाएं पैदा हुई, तो फिर इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो क्रोध आया, फिर जो जो परिवार बना उसके लिए इकट्ठा करने की टेंडेंसी पैदा हुई, क्योंकि इच्छाएं ज्यादा हो गई थी तो मेरे पास ज्यादा हो तो लोभ आया। फिर जो हमारे परिवार वाले बन गए थे, जो हमारे नीचे काम कर, उनके प्रति मोह आया, है ना, जो मेरी महिमा करते थे उसकी मोह आ गया, और इन सबको बचाने के लिए अहंकार आ गया, सेनापति, है ना। तो पांच विकार ऐसे आए ना, तो ये देह विमान आया ना, तो देह विमान से फिर ये सब प्रॉब्लम आई, तो हम देह अभिमानी बन गए, नेचुरल हो गया देह विमान, देहभान और देह विमान नेचुरल हो गया। और देहभान तो मनुष्य क्या है, मन के वश में, जितने भी देह अभिमानी मनुष्य हैं उनके बुद्धि में क्या रहता है, मन में क्या रहता है, उनकी बुद्धि में और मन में नेचर और नेचुरल बन गया, क्या बन गया, एक तो देहभान, देह अभिमान, और देह अभिमान के संबंध संपर्क, देह अभिमान के संबंध संपर्क, मैं मेल हूं, मैं फीमेल हूं, तो मेरे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, दोस्त, बिजनेस के साथी, है ना, जो भी हम काम करते हैं उसके साथी, संपर्क वाले, कॉन्टेक्ट वाले, है ना। तो ये बुद्धि में आ गया, मन में भी आ गया, तो ये हमारा अंदर ये स्थिति हमारी आ गई, और साथ साथ देह अभिमान के पदार्थ भी आ गए, जो चीजें मेरा मकान है, घर है, पैसे हैं, कार है, बैंक बैलेंस है, अपनी पर्सनल चीजें हैं, वो भी क्या है, बुद्धि में चली गई, है ना, बुद्धि में चली गई, मन में चली गई, राइट, उसी के विचार चलते थे। फिर देह अभिमान को जब प्रैक्टिस किया तो देह अभिमान से पांच विकार पैदा हुए, जैसे बताया ना शुरू शुरू में, काम, क्रोध, ये स्वभाव, स्व माने आत्मा, आत्मिक भाव की बजाय क्या भाव आ गया, काम विकार का भाव आ गया, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार मेरी नेचर बन गई, क्या बन गई, नेचर बन गई। एक्चुअली काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार क्या है, ये हमारा डर की वजह से पैदा हुआ, क्योंकि देहभान से, देह विमान से डर पैदा हुआ, डर पैदा हुआ, नहीं हुआ, आत्मा थे तो डर था, आत्मा मरती नहीं, बूढ़ी होती नहीं, गरीब होती नहीं, किंतु देहभान, देह विमान से इनसिक्योरिटी क्या पैदा हुई, मरने का डर, बुढ़ापे का डर, और बीमारी का डर, और किसी का डर, गरीबी का डर, राइट, साधन कम होता, तो ये चार डर तो पैदा हो गए, और डर से फिर क्या हुआ, ये देह विमान, ये काम विकार पैदा हुआ, कोई तो मेरे पास ऐसा हो जो मेरे लिए हो, वो किसी की तरफ देखे नहीं, किसी सिर्फ मेरा ही हो, ये मेरी हो सिर्फ, राइट, तो क्रोध आया उसकी, उसके से फिर लोभ आ गया, तो ऐसे पांचों विकारों का जन्म हुआ, और इन पांचों विकारों से जो आत्मा के सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं थी ना, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां, जब हम काम विकार या क्रोध करते हैं, लोभ करते हैं, मोह करते हैं, तो ये सातों एनर्जी जल जाती है, ज्ञान सत्य की समझ, माना ABCD, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, जैसे देह विमान आता है ये खत्म हो गया, ज्ञान खत्म हुआ, नहीं हुआ, मैं आत्मा हूं रहा क्या, मैं आत्मा तो हुई नहीं, मैं तो देह हूं, मैं मेल हूं, मैं फीमेल हूं, मैं ये हूं, मैं तुम्हारा बड़ा हूं, मैं इंचार्ज हूं, मैं बहुत बड़ा हूं, मेरा कहना मानो नहीं तुम्हें खत्म कर दूंगा, हाथी के पैर के नीचे लगा देंगे, है ना, तुमको जेल में डाल देंगे, राइट, हुआ ना। तो ये जो देह विमान आया ना, इसने क्या किया, आत्मा का भान खत्म कर दिया, परमात्मा का साथ खत्म कर दिया, और ड्रामा में जो हुआ अच्छा हुआ वो खत्म कर दिया, मैं जो कहता हूं वो होना चाहिए, मैं जो कहूं वो अच्छा, जो तुम कहो वो गलत, है ना, राइट, मैं ही तुम्हारा मालिक हूं। तो ये फिर पवित्रता खत्म हो गई, एक दूसरे को आत्मिक भाव, जो आत्मानी स्थिति खत्म हो गई, देह अभिमान से देखने लगे एक दूसरे को, बड़ा छोटा, मेल फीमेल, काला पीला, काला कोरा, जो भी, मतलब शिक्षित अशिक्षित, है ना, वट एवर, तो वो देखने लगे। तो इस तरह से हमारे अंदर ये एनर्जी खत्म, शांति खत्म हो गई, पास्ट में जो मेरे साथ ने किया था, उसने किया था, उसने किया था, वो सारा मेमोरी में रिकॉर्ड हो गया, सबकॉन्शियस माइंड बनता गया, अनकॉन्शियस माइंड बनता गया। चलिए यहां वैसे टॉपिक लंबा हो जाएगा, 20 जन्म तक हमारा 100% मन कॉन्शियस होता है, कॉन्शियस माना ट्रांसपेरेंट होता है, हमारा फुल कंट्रोल होता है, जो सोचते वो हो जाता है। कि तू जैसे 21वां जन्म माना, एक जन्म तो ये हो गया, ये भी गिनो, चलो ये भी गिन लो, तो ये मिला करके तो 21 जन्म हो गए। जैसे 22वां जन्म आता है तो पहली बार हमसे पाप कर्म होने शुरू होते हैं, काम विकार क्रोध लोभ मोह अहंकार आता है, राइट, और पहली बार उसके वश होकर के हम पाप कर्म करते हैं। वो कहां जाता है, वो कहां जाता है, वो फाइल कहां जाती है, वो फाइल सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। पहली बार सबकॉन्शियस माइंड बनता है, दिल पहले जाती, दिल सच्चे दिल साफ दिल, सच्चे दिल में एक सत्य की समझ के अलावा कुछ और भी नहीं है, ज्ञान पवित्रता शांति प्रेम सुख और आनंद के अलावा कुछ नहीं है। एक बाबा कहें संगम के हिसाब से कहें तो एक बाबा और बाबा की मुरली के अलावा हिसाब से कुछ और कुछ है ही नहीं, जिसमें मुरलीधर और मुरली है, सच्चे दिल माना जिसमें बाबा के अलावा कुछ दूसरा नहीं है, और साफ माना जिसमें मुरली के अलावा श्रीमत के अलावा मनमत परमत कुछ भी नहीं है। तो इसकी दिल सच्ची और साफ होती है तो विवेक जागृत हो जाता है, विवेक माना सत्य को परखने की शक्ति, सत्य तो सत्य को परखने की शक्ति, तीसरी आंख खुल जाती है, निर्णय शक्ति यथार्थ हो जाती है, और उससे विस्तार को सार में लाने की शक्ति, एक सेकंड में जब निर्णय कर लिया तो एक सेकंड में देह और देह की दुनिया से मन बुद्धि को समेट के और हम ज्योति बिंदु आत्मा बन के, और सूक्ष्म शरीर का मतलब क्या है बोलो, सूक्ष्म शरीर किसे कहते हैं, आत्मा को, लाइट का शरीर क्या होता है, लाइट का शरीर होता है कि बनाना पड़ता है, आप घर में आटा है आपके, पानी भी है गैस भी है, रोटी बनानी पड़ती है अपने आप बन जाती है, सब्जी है सब्जी बनानी पड़ती है सब्जी अपने आप बन जाती है, बनानी पड़ती है ना, तो इसी तरह से हमको अपना सूक्ष्म शरीर बनाना पड़ता है। मन हमारा सूक्ष्म शरीर है, क्या है, मन हमारा सूक्ष्म शरीर है और बुद्धि उसका इंजन है, दिव्य बुद्धि उसका इंजन है, और संस्कार हमारी ड्रेस है। जो मनुष्य होते हैं उनके मन में क्या भरा हुआ होता है, देहभान देहाभिमान, देहाभिमान के संबंध संपर्क भान, और देहाभिमान के से पैदा होने वाले 5 विकार, और उससे पैदा होने वाली संस्कार आदतें, आलस्य अलबेलापन दोष दर्शन बदलने की भावना शक अनुमान चिंता भय जल्दीबाजी ईर्ष्या द्वेष भरा होता है, राइट। तो ये तो काला हो गया, मन सारे शरीर में फैला हुआ है, हमने पहले भी शेयर किया ना। अब हमको क्या करना, जब समझ हमको मिलती है, सत्य की समझ मिलती है, तो यही देही हमारी स्थिति है, जो सत्य की समझ हमको मिलती है ना, अब इसको हम क्या करते हैं, बाबा से दिल में हमारे बुद्धि में, बाबा हमें कहां कम से कम से बात करता है, दिल में बुद्धि में हमको एक ज्ञान डालता है, मन में नहीं डालता है, कहां डालता है, बुद्धि में, बुद्धि हो गया ना, बाबा हमारे दिल में आ जाता है, बुद्धि में आ जाता है, बुद्धि को टच करता है, कहता है बुद्धिमानों की बुद्धि है, तो बुद्धिमानों की बुद्धि हमको दिल में टच, बच्चे तुम तो ये थे, हमारी जैसे दिव्य ब्राह्मण जन्म देता है हमको दिव्य दृष्टि वरदान में दे देता है, दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि वरदान में देता है। जितना दिव्य दृष्टि को हम यूज करते जाते हैं उतना दिव्य बुद्धि रूपी विमान, दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट एक्टिव होती जाती है। दिव्य दृष्टि क्या देता है, पहले तो दिव्य दृष्टि देता है, बच्चे तुम देह नहीं, स्थूल देह नहीं, स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु है, राइट, देता नहीं देता। हम क्या थे पहले, एक दूसरे को देह के रूप में देखते थे, अपने को भी देह रूप में देखते थे, अब जैसे ही समझ मिलती है तो क्या होता है, अब इस देह में अपने आप को आत्मा देखने लगते हैं, सामने मेरी माँ है उसको भी उस देह में आत्मा देखने लगते हैं, पिताजी हैं उसको भी, बहन को भी, भाई को भी, ऑफिस में बॉस है उसको भी, हमारा टीचर है उसको भी, छोटा भाई है उसको भी देखने लगते हैं, क्या क्या रूप में, तो दिव्य दृष्टि मिली नहीं मिली, तो बाबा हमको आते ही पहले दिव्य दृष्टि देते हैं, अपने को आत्मा देखो और फिर सबको, हम सब आत्माएं उस एक बाप की संतान है, इस रूप में देखो, आपस में हम आत्मा भाई भाई हैं, ये दिव्य दृष्टि की पहली स्टेज है। और तुम जो इस संसार रूपी नाटक में आए हो ना, इस परिवार में जन्म लिया, क्यों जन्म लिया, सिकंदराबाद में क्यों जन्म लिया, दिल्ली में क्यों नहीं जन्म लिया, बोलो उसी परिवार में जन्म क्यों नहीं लिया, क्योंकि सिकंदराबाद में रहने वाले उस परिवार से मेरे उन आत्माओं से मेरा हिसाब किताब था, राइट, क्यों जन्म लिया, उस परिवार से मेरा हिसाब किताब था, उनसे लेन देन बाकी था, तो उन वहां उनके यहां वहां जन्म लिया। ये ड्रामा है, कर्मों का हिसाब किताब था। तो ये सब बातों का चिंतन करना दिव्य दृष्टि मिलने जो बाबा से, इसको ही क्या कहते हैं, देह में रहते हुए देह भान देह विमान का चिंतन ना करके, देह विमान से पैदा होने वाले स्वभाव संबंध संपर्क का चिंतन ना करके, देह विमान के पदार्थों का चिंतन ना करके, देह विमान से पैदा होने वाले काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की स्वभाव उसको चिंतन ना करके, देह विमान के से पैदा होने वाली आदतों, इन पांच विकारों के प्रैक्टिस से जो हमारे अंदर 5, 7, 10 आदतें बनती हैं, 10 आदतें बन जाती हैं। कौन सी? क्योंकि एनर्जी कम हो जाती है तो हमारे एक तो आलस की आदत बन जाती है। आत्मा की कौन सी आदत है? आत्मा सदा अलर्ट है। आत्मा क्या है? सदा अलर्ट है कि सोई हुई है? हम सो रहे हैं तो हार्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है कि बंद हो गया? आत्मा भी सो गई और हार्ट भी सो गया, नहीं? फिर सुबह क्या होगा? अगर हार्ट सो जाए तो क्या होगा, है ना? फेफड़े चलते रहते रात में, नहीं चलते? पेट में खाना पचता रहता है? किडनी खून साफ करती रहती है? नहीं करती है? नहीं करती है? करती रहती है ना। तो आत्मा सदा अलर्ट है कि तो एनर्जी काम क्रोध लोभ अहंकार में एनर्जी कम कर देते हैं तो क्या होता है? अब आलस आने लगता है, आलस आने लगता है, इसलिए बीमारी शुरू होती है, हार्ट की खराबी होती है, सांस में तकलीफ आती है, पेट में खाना पचना बंद हो, गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, नहीं होता है? होता नहीं होता? हड्डियां दर्द करती हैं क्योंकि आलस आ गया है ना, एनर्जी खत्म हो गई, क्योंकि आत्मा इन 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से शरीर को चलाती है। जैसे हार्ट प्यार से चलता है, लंग्स शांति से चलते हैं, पेट खुशी से चलता है, थायराइड किससे चलती है? आनंद से चलती है, पेनक्रियाज आनंद से चलता है, राइट? हड्डियां किससे चलती हैं? शक्ति 8 शक्तियों से चलती हैं। अब वो एनर्जी कम हो गई तो क्या हुआ? सारे नाराज हो जाते हैं, घुटने भी नाराज, कमर भी नाराज, हार्ट भी नाराज, फेफड़े भी नाराज, आंखें भी नाराज, है ना, आंखों पर चश्मा लग जाता है, कान दिमाग भी नाराज, तिरदत होता है, याद नहीं रहता है, आधी बातें भूल जाती है, नहीं होता है? नाराज है कि नहीं? तो ये आलस आया ना, तो ये आत्मानी स्थिति खत्म हुई, देवमानी स्थिति से क्या हुआ? आलस आने लगता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में एनर्जी जलती है ना तो आलस आता है। आत्मा सदा एक्यूरेट हर काम करती है, कि तू ये क्या करता है? अलबेलापन, राइट? आत्मा का जो नेचर है ना, गुण दर्शन की है, हंस है आत्मा। क्या है? हंस है, हंस दृष्टि है आत्मा की। सबके गुण दिखाई देते हैं, सत्ययुग में सबके गुण दिखाई देते हैं, और जैसे ही द्वापर शुरू होता है, देह अभिमान आता है, तो सबके अवगुण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, दोष दर्शन। इसलिए घर घर में झगड़ा है, भाई भाई में झगड़ा है, पति पत्नी में झगड़ा है, मां बाप और बच्चों में झगड़ा है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज में झगड़ा है, नहीं है? दोष दर्शन शुरू हुआ ना, अच्छी बात नजर नहीं आती। शादी के पहले एक लड़का और लड़की है, कहते इसके जैसे लड़का कोई नहीं है, मैं इससे शादी करूंगी नहीं तो मर जाऊंगी, शादी नहीं करूंगी। और लड़का कहता है इसके जैसी लड़की कोई दूसरी धरती पर है ही नहीं, इसमें सारे गुण है, मैं अगर इससे नहीं शादी करूंगा तो मैं शादी नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, है ना? शादी के पहले उनकी शादी कर दो, 3 महीने के बाद पूछो फिर क्या होता है। अब वो लड़के से पूछे लड़का कैसा है, कहता है इसमें वो ये खराबी है, ये खराबी, ये खराबी, ये खराबी, ये खराबी। लड़के को पूछे कैसी है अभी, कहते ये इसमें बहुत खराब आदत है, बहुत खराब आदत है, बहुत खराब आदत है। नहीं, क्या हुआ? क्योंकि उसके पहले एक दूसरे को सितारे के रूप में देखते थे, हंस हंस के रूप में, हंस कहते हैं 2 हंसों का जोड़ा, और उसके बाद क्या बन जाते हैं? 2 बगलों का जोड़ा ना? क्या बन गए? बगलों का जोड़ा, है ना? अब कीड़े दिखाई देते हैं, बगले के सामने मोती रखो ना बहुत सारे, बीच में 2 कीड़े रख दो दूर दूर, तो मोती नजर नहीं आते, क्या दिखाई देते हैं? कीड़े नजर आते हैं। और हंस के सामने बहुत सारे कीड़े रख दो, बीच में दूर दूर 2 मोती रख दो, उसको क्या नजर आता है? मोती दिखाई देते हैं। तो देह विमानी स्थिति में हमको सारे क्या है, हमको गुण दर्शन होता है, और जैसे ही हम बॉडी कॉन्शियस बनते हैं, रोल कॉन्शियस, तो हमको अवगुण दर्शन शुरू हो जाता है। और आत्मा के नेचर रहम दिल है, सब पे रहम करना, और देह विमान आ गया तो क्या नेचर है? बदला लेने की भावना। क्या? बदला लेने की भावना। आत्मा के नेचर निश्चय और विश्वास है, सब पे आत्मा का स्वभाव है, नेचर है, सब पे निश्चय रखता है, निश्चय रहता है और विश्वास, तभी तो हम जी पाते हैं, तभी तो चैन से सो जाते हैं। और जहां देह विमान आया ना तो क्या होता है, शक और अनुमान, संशय और अनुमान, विश्वास ही नहीं किसी पे करते हैं। पहले लोग, मुझे याद है आज से 50 साल पहले, लोग अपने घरों सड़क पे सोते थे, सड़क पे सारा दिन, तब तो कारें तो थी नहीं, साइकिल होती थी बस, स्कूटर भी नहीं होते थे, लोग शाम को सड़क पे, पूरी सड़क पे चारपाई लग जाती थी ऐसे अपने अपने घर के आगे, और चारपाई पे सब सोते हैं, छत पे भी लोग, कुछ लोग सोते थे, बाकी ज्यादातर सड़क पे सोते थे, सड़क पे चारपाई लग के सोते थे, सुबह सुबह उठ जाते थे। अब आज देखो, आज तो सड़क पे सोने की तो बात ही छोड़ो, क्या करते हैं, कमरे में सोते हैं और कमरे पे बाहर से ताला लगा है मकान का, फिर भी अंदर से कुंडी लगा लेते हैं, बेडरूम की भी अंदर से कुंडी लगा लेते हैं। क्यों भाई, पहले तो तुम सड़क पे सोते थे तो वहां तुम्हें उठा के ले जाएगा, मतलब तुम्हारे कमरे में से उठा के ले जाएगा फिर, तो कितनी इनसिक्योरिटी आ गई, समझ रहे हैं, शक और अनुमान। और आत्मा के नेचर क्या है, निश्चिंत, जब आत्मानी स्थिति निश्चिंत स्थिति है ना, और निर्भय, बेफिक्र है आत्मा। और जैसे देह विमान आता है तो क्या होता है, चिंता और भय, ये आदत बन जाती है, चिंता। आज के मनुष्य की नेचर क्या है, चिंता और भय की आदत है। फिर जो है आत्मा की नेचर कैसी है, आत्मा की नेचर है किसकी, आत्मा की नेचर है धीरेता की, हर काम में पेशेंस, हो जाएगा, आत्मा को पता है, बीज डाला है, धीरे धीरे अंकुरित होगा, फिर बड़ा होगा, फिर फल आएगा, बाद में आएगा फूल आएगा, फिर फल आएगा, हर चीज धीरे धीरे बड़ी होती है, पेशेंस, आत्मा को ये चीज का पता है, बच्चा है पैदा हुआ, धीरे धीरे 9 महीने 10 महीने के बाद बोलेगा, फिर थोड़ा चलेगा, है ना, थोड़ा एकदम से पैदा हुआ उठ के चलना शुरू कर देगा, बोलना शुरू कर देगा, ऐसा है क्या, आत्मा को पता है ये बात का, नहीं पता है, ये आत्मा को पता है। तो पेशेंस की आदत आत्मा में शुरू से है, कि तो जैसे देह अभिमान आता है ना, मैं अपने मेरापन आता है तो तुरंत 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 प्रेशर, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, कंपटीशन का प्रेशर, कंपैरिजन का प्रेशर, है ना, ठीक होता है। और आत्मा का नेचर कल्याण करने की है, सबका कल्याण, सब पहले खा लें उसके बाद मैं खा लूं, सबको मिल जाए, सबका पेट भर जाए, फिर मैं मेरे जो बच्चे का मैं खा लूं, ये आत्मा का नेचर, स्वभाव है, आदत है आत्मा की, राइट। और अभी कैसे नेचर हुई, अभी तो ईर्ष्या की, दूसरा कोई मेरे से आगे कैसे जाए, है ना, दो कुत्ते होते ना, दो कुत्ते को आप डाल दो रोटी, एक इधर डाल दो रोटी इधर, तो प्यार से खा लो, क्या करेगा, जब बड़ा कुत्ता होगा ना बिल्कुल खाने नहीं देगा, मौके भगा देगा उसको, दूसरे वाले को, है ना, नहीं करेंगे। दो शेर हो और शेर के सामने भाई एक जानवर, तो आधा आधा खा लो, कोई बात नहीं, ठीक है, आधा आधा खाएंगे नहीं खाएंगे, लड़ेंगे, है ना। तो यही इंसान की नेचर है ना। तो मैं क्यों बात आपसे शेयर कर रहा हूं, ये वाली, ये हमारे नेचर अभी की है। और देह मानी स्थिति में क्या करना पड़ता है, अब देह में रहते हुए बाबा हमको आके कहता है, इस देह में रहते हुए अपने सत्य में टिको, मैं देह नहीं, इस देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चेतना, ये दिव्य दृष्टि को यूज करो। और फिर ये पहली दिव्य दृष्टि पहली स्टेज है, फिर दिव्य दृष्टि की दूसरी स्टेज क्या होती है, फिर बाबा कहते हैं, बच्चे तुम अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप को याद करो, परमधाम में तुम थे ना मेरे पास, कैसे थे, सर्वगुण कैसे थे, संपूर्ण पावन सत्व प्रदान थे, जैसा मैं हूं ना, परम सत्य, परम पावन, परम शांत, परम प्रेम, परम अतीन्द्रिय सुख, परम आनंद और परम सर्वशक्तिवान हूं, वहां पर हूं ना, ऐसे तुम आत्मा भी मास्टर परम थे, तुम आत्मा भी मास्टर परमात्मा थे, तुम आत्मा भी मास्टर क्या थे, मास्टर पावन थे, परम पावन थे, मास्टर परम शांत थे, जैसे मैं था ऐसे तुम थे, जैसे मैं चमक रहा तुम भी वैसे ही चमक रहे थे, है ना। और जब तुम सत्युग में आए, तुम आदि देवी देवता स्वरूप को इमर्ज करो, सर्वगुण संपन्न, 36 के 36 गुण तुम्हारे अंदर परफेक्ट थे, 36 और 16 कला संपूर्ण, हर गुण में तुम 100% थे, इसको इमर्ज करो बुद्धि में। 16 कला का मतलब क्या होता है, कोई 16 कला का मतलब क्या है बताइए, कौन बताएगा, नाचने की कला, खाना बनाने की कला, ऐसे सजाने की कला, ऐसे है जी। हाँ, हर गुण में 100%, हर गुण कला के माफिक बन जाए। क्या बन जाए? जैसे मधुरता है तो मधुरता 100%। मान लो सामने वाला, अच्छा ये गुण हमको यहां चाहिएंगे, सत्संग में चाहिएंगे क्या? सत्संग में, सत्संग में हमको सहनशीलता चाहिए क्या? चाहिए नहीं चाहिए? सत्संग में हमको सरलता चाहिए क्या? हमारा तो सोने के अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे ना, सरलता चाहिए क्या? सत्संग में हमको नम्रता चाहिए क्या? सत्संग में उदारता चाहिए क्या? धैर्यता चाहिए क्या? आवश्यकता ही नहीं है वहां तो कुछ भी, है ना। ये 36 के 36 वहां तो हम प्रलब्ध है ना हमारा, अब उसको प्रैक्टिस करना है हमको, राइट। तो ये जो है देहमन स्थिति क्या है, जो बाबा ने हमें सत्य की समझ दी, उसका मनन चिंतन मंथन स्मरण करना, ये है सत्य की। ये क्या है? ये क्या है? देहमन स्थिति, पहली स्टेज। इसमें मेहनत है, पुरुषार्थ की स्टेज है। इसमें चार चीजें आती है, मनन चिंतन मंथन सिमरन। जो बाबा ने इसमें मुरली जो बाबा की, बाबा कैसे देता है हमको ज्ञान, कैसे देता है? इस मुरली के द्वारा। तो मुरली के एक महावाक्य का मनन चिंतन मंथन सिमरन। मैं चलो इसी बारे में एक आपको बात सुनाता हूं। आज की मुरली में भी ना सिमरन है ना, आज की तीसरे पेज पे ना सिमरन करो, दही मानी स्थिति, दही मानी बन के दही मुझ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, है ना। तो मुझे याद आता जब मुझे, वैसे तो मैं दिल्ली में हार्ट के हॉस्पिटल में था, तब बाबा ने मुझे टच किया, हार्ट की जो बात की ना बेंजी ने, तो तब मुझे टच किया कि जो हार्ट हम लोग जो पेश हार्ट की एंजियोप्लास्टी करके भेजते ना, तो दोबारा स्टेंट बंद हो जाते हैं, बाईपास करते फिर बंद हो जाते हैं, कई को तो 6 महीने में बंद हो जाते हैं, 3 महीने में बंद हो जाते हैं वापस, बाईपास फेल हो जाते हैं, एंजियोप्लास्टी फेल हो जाती है। और लोग हमको कहते थे, डॉक्टर साहब हमने एक बार तो अपना मकान बेच के एंजियोप्लास्टी करा ली, अब हम क्या करें? दोबारा कह रहे हो 3 महीने बाद, फिर कह रहे दोबारा करा लो, फिर 3 लाख रुपए जमा कराओ, हम कहां से जमा कराएं? तो मेरे को बड़ा फील होता था। और तब ये रिसर्च प्रोग्राम डॉक्टर कलाम साहब से शेयर किया मैंने, जो मुझे बाबा ने टचिंग दी अमृत वेले, 27 फरवरी 1994-95 को मुझे टचिंग दी कि कैसे कैसे हार्ट की बीमारी होती, कैसे खुलती है। तो उसके आधार पर मैं लेक्चर बनाया, एक कहीं भाषण दिया डॉक्टर्स की गैदरिंग में, एक साइंटिस्ट बैठे थे DRDO के, उसने जाके डॉक्टर कलाम साहब को बताया, उन्होंने फिर मुझे बुलाया, फिर बातचीत हुई। तो उसने कहा, डॉक्टर साहब ये रिसर्च करेंगे डॉक्टर गुप्ता आप? तो मैंने कहा हाँ करूँगा, आप ये करो तो मैं आपका साथ दूंगा, और तब आप रिसर्च करना। तो रिसर्च बन गई, फिर मैं माउंट आबू करने के लिए वहाँ, हालांकि दिल्ली में मुझे रिसर्च की फैसिलिटी दे रहे थे वो लोग, कि तो मैंने कहा नहीं मैं तो माउंट आबू, क्योंकि माउंट आबू मैं काफ़ी समय से इधर आ रहा था, 86 से मैं रेगुलर बाबा के घर में आ रहा था, और मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और ऐसे तो 68 से हमारे घर में गीता पाठशाला थी, बचपन से दादियों की पालना मिली थी, हर संडे को और गुरुवार को जाते थे, भोग खा के आते थे, मुरली नहीं सुनते थे, भोग खा के आते थे, भोग खाने में नंबर 1 थे, मुरली सुनते टाइम बाहर खेलते थे, है ना, क्लास में नहीं बैठते थे, माता पिता क्लास सुनते थे, मुरली सुनते थे, हम बाहर खेलते थे, बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे, 9-10 साल के 11 साल के। तो वो जो है, फिर जब ये, फिर इसको मैंने माउंट आबू शिफ्ट कर लिया हमने इसको रिसर्च को करने के लिए। जब यहाँ शिफ्ट हो गए 95 अप्रैल 95 में यहाँ शिफ्ट कर लिया, 9 मार्च को मैं डॉक्टर कलाम साहब से मिला, 1.25 महीने में सब कुछ बन गया, रिसर्च प्रोग्राम भी बन गया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को भी दे दिया, और मैं यहाँ शिफ्ट भी, बाबा ने ऐसे वंडरफुल काम किया, यहाँ आ गया। अब यहाँ आने के बाद शुरू किया, काम शुरू हो गया, और हमने काम मतलब, पर यहाँ आके बहुत प्रेशर था काम का, फैसिलिटीज थी नहीं जैसे दिल्ली के बड़े अस्पताल में थी, तो काम ज़्यादा करना पड़ता था, और दिन रात काम करना, स्टाफ ज़्यादा था नहीं, तो दिन रात काम करते करते, और क्या हुआ कि रात को नींद में नहीं कई बार करते थे, तो शायद मेरे को, हमने 9 नवंबर 96 में मुझे तकलीफ हो गई हार्ट की, सिर्फ 37 साल की उम्र में, मेरे को कोई तकलीफ थी नहीं, मैं तो लॉन टेनिस खेलता था, क्रिकेट खेलता था, बैडमिंटन खेलता था, बहुत अच्छा प्लेयर था मैं, सारे पहाड़ जितने ना माउंट आबू के, मम्मा की पहाड़ी, बाबा की पहाड़ी पर रोज चढ़ते थे, रोज बाबा की पहाड़ी पर चढ़ते थे, सुबह सुबह अमृत वाला योग करके जाते थे, और डेली सारे जितने पहाड़ हैं मैंने सब ऊपर घूमे, सबने सब के सब घूमे, कोई तकलीफ ही नहीं थी। अचानक नवंबर 96 में मुझे अचानक छाती में दर्द हुआ, पसीना आया, घबराहट हुई, ईसीजी खराब हो गए। अब मैं तो खुद हार्ट का डॉक्टर था, तो मेरे को तो समझ भी लगी कि हाँ हार्ट की बीमारी है, कुछ पता अटैक पर है, अटैक वाली बात नहीं थी शायद। तो इको कराया, हमारे पास उस समय इको की फैसिलिटी नहीं थी अहमदाबाद, तो वो बीमारी पकड़ नहीं पाए। फिर बॉम्बे में जाके एंजियोग्राफी कराई, एंजियोग्राफी भी नॉर्मल थी, कोई ब्लॉक नहीं था। उसने कहा आपका हार्ट तो बिल्कुल ठीक है, इको में कोई बीमारी पकड़ ही नहीं पाया। किंतु मैं साइडा सो नहीं पाता था, जब सीधे दर्द शुरू हुआ साइडा सो नहीं सकता था, बैठ के ही सांस आता था और छाती में बहुत दर्द, धड़कन बहुत रेगुलर होती थी। मैं बता रहा हूं कि राजयोग करने के 11 साल बाद मुझे तकलीफ हुई है ना, और क्या प्रॉब्लम थी, कहां हम गलती करते हैं, ये मैं आपसे शेयर करता हूं। कहां हम राजयोग को गलत कर देते हैं, क्यों हमें असर नहीं होता राजयोग का? सही विधि पूर्वक राजयोग करो तो उसका असर होता है, गलत विधि पूर्वक नहीं करो तो असर नहीं होता है। तो फिर जो है फरवरी 97 में मुझे 4 महीने हो गए थे, 3 महीने हो गए थे बिना सोए। नवंबर में शायद 28 नवंबर को मुझे तकलीफ 28 को हुई थी, तो 3 महीने से मैं सोया नहीं था, सारी रात बैठ रहता था और ऑक्सीजन लगा के रखता था कमरे में, यहीं पर ही माउंट आबू में ना डॉक्टर हाउस में रहते थे हम लोग, तो वहां पर जो है वो लगा के रखता था, और तो भी सांस नहीं आता था, तो दर्द बहुत होता था। दिन में थोड़ा अच्छा रहता था, रात में ज्यादा तकलीफ बढ़ जाती थी। तो फिर जो है वहां पर मैं उदयपुर में कॉन्फ्रेंस थी, इको कार्डियोग्राफी होती है, हार्ट का इको कार्डियोग्राफी होता है, जैसे हार्ट का पेट का अल्ट्रासाउंड होता है ना, ऐसे हार्ट का टेस्ट होता है। तो उसमें मैं चला गया, तो पास में थी तो गाड़ी लेके चला गया, और वहां पर एक मेरा फ्रेंड था यूएसए का, माया क्लिनिक का, उसने मेरे को देखा, हम लोग मिलते रहते थे कॉन्फ्रेंस में मिलते थे। उसने कहा डॉक्टर गुप्ता यू आर नॉट लुकिंग गुड, क्योंकि आंखें इतने दिन सोया नहीं तो क्या होगा, आंखें कैसी हो जाती हैं। तो कहते हैं डॉक्टर यू आर नॉट लुकिंग गुड, यू आर नॉट वेल, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा हाँ ऐसा मुझे हो रहा है कुछ दिनों से, पर एंजियोग्राफी इज नॉर्मल, इको इज नॉर्मल, एवरीथिंग इज नॉर्मल। कहते लेट मी सी योर हार्ट, आप आओ मैं आपका हार्ट देखता हूँ। उसने मेरा इको किया कॉन्फ्रेंस में, वो मशीनें होती हैं, लेटेस्ट मशीनें होती हैं। इको देख के उसने कहा डॉक्टर गुप्ता आपका तो हार्ट में एक बीमारी होती है हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, हार्ट की दीवारें बहुत मोटी हो जाती हैं, डबल से भी ज्यादा मोटी हो गई थी। कहते आपकी हार्ट की दीवार डबल से भी ज्यादा मोटी हो गई है, और जो हार्ट की जो खून जाता है ना सारी बॉडी में, उसका रास्ता रुक गया बिल्कुल, इसलिए आपको तकलीफ होती, इसलिए सांस नहीं आता, लेट नहीं सकते हो आप। एंजियोग्राफी तो नॉर्मल थी, तो ये तो आपका, इसका आपको जल्दी से ऑपरेशन कराना पड़ेगा, और यूएसए में आ जाओ तो मैं आपका ये ऑपरेशन भी कर दूंगा, और पेसमेकर वो एक मशीन होती है यहाँ पे वो लगा दूंगा। तो मैंने सोचा मैंने कहा ठीक है, मैं घर में बात करके आर लेट यू नो, मैं आपको टेलीफोन नंबर ले लिया उसका, आपसे बात करूंगा। तो आया, दादी जी को मैंने शेयर किया, दादी जी ऐसे ऐसे बात है। उसने कहा डॉक्टर को डिले मत करना, इसमें लोग अभी तक मेरे जो अनुभव में सारे विश्व के लोग मेरे पास आते हैं, इसमें दो लोग 2 साल से ज्यादा नहीं जितना रहे, इस उम्र में अगर आपको हार्ट की बीमारी हुई मैक्सिमम 2 साल जिंदा रह सकते हो, ये तो बीच में कभी भी डेथ हो सकती है। वैसे मुझे खुद फील होता कभी भी डेथ हो जाएगी, ऐसा लगता था मुझे, कभी हार्ट बंद हो जाता, कभी चलता, कभी बंद हो जाता, कभी चलता, कभी बंद हो जाता, इतने जोर से जब भूकंप जैसे आता था जोर से अंदर से ना, अभी गया, तो ऐसा मुझे लगता था। किसी को बोलते तो कहते खुद आप खुद ही हार्ट के डॉक्टर हो, हम क्या करें, हमका इलाज क्या, तो हार्ट का डॉक्टर है भी नहीं, तो ऐसा घर ऐसे हॉस्पिटल वाले बोल देते थे, कोई इलाज तो था ही नहीं। तो उसी उन्हीं दिनों एक डॉक्टर एक थे ना, एक इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे मुरासाली मारन, जानते होंगे दयानिधि मारन जिसका बेटा था ना, तो उसको यही बीमारी हुई थी मेरी वाली, अखबार में रोज आती थी कि वो यहां से अमेरिका गया और अमेरिका जाकर के उसने ये ऑपरेशन कराया और उसके बाद आईसीयू में दाखिल है, फरवरी के मास की बात है, तो वो जो है उसको वहीं दाखिल है, और 1 महीना हो गया था उसको जिस दिन मेरी न्यूज, जिस दिन ये मेरे को बताया उस डॉक्टर ने बताया, 1 महीने से ज्यादा हो गया था और वो वहीं पर दाखिल रहा और 2 महीने में मर गया, वहीं पर मर गया, ब्रेड बॉडी भारत में आई। तो मैंने कहा मुझे मरना तो नहीं है, तो मुझे तो मैं तो रिसर्च हार्ट की रिसर्च करने आया था कि लोगों को राजयोग से कैसे उनकी ब्लॉकेज खुल जाए, मैं तो ये करने आया था, और मुझे बीमारी कहां से आ गई। तो फिर जो है मैं दादी बड़ी दादी जी को आके शेयर किया, दादी यहीं पे चांदनी चौक, नहीं चांदनी चौक कहते ना इसको, दादी यहाँ बैठी थी, गुलजारदा जी साथ में बैठी थी, तो सुबह सुबह मुरली के बाद में मिला, तो मैंने दादी को बोला दादी ऐसे ऐसे मेरे को गया था मैं उदयपुर, तो मेरे को बताया ये बात बताई उन्होंने कि इसने कोई बात, उसने उसने गुप्ता जी कोई बात नहीं, मैं मोहिनी बहन को फोन करती हूँ, आप यूएसए में चले जाओ और वो वहां पे आपको ऑपरेशन हो जाएगा, वो पेसमेकर भी लगा दे, जो खर्चा होगा आपको चिंता करने की बात नहीं है, यज्ञ देखेगा, यज्ञ उसकी देखभाल करेगा, आप जाके करा के आ जाओ। पर दादी मैंने मैंने कहा दादी मैं तो यहाँ पे मैं अपना ऑपरेशन कराने आया था कि लोगों का ऑपरेशन रोकने के लिए मैं तो रिसर्च करने आया था, मुझे क्या हुआ। तो दादी साथ में गुलजार दादी बैठी थी, उसने कहा गुल जाओ बाबा से पूछना कि डॉक्टर गुप्ता को ये क्या तकलीफ क्यों हुई है, इसका क्या इलाज है। तो दादी ने सुबह के बताया कि इसका इलाज जो है ना, जो ये जो बीमारी है ना, ये डॉक्टर डॉक्टर को अनुभव की अथॉरिटी बनाने के लिए बीमारी आई है, क्योंकि उसको हार्ट की रिसर्च करनी है, दूसरों को हार्ट पेशेंट को सिखाना है, जो उनको तकलीफ होती है इसको थी नहीं, तो इसको पता ही नहीं हार्ट की बीमारी होती क्या, दर्द कैसा होता है, तकलीफ कैसे होती है, रेगुलर हार्ट बीट कैसे होती है और ठीक कैसे करते हैं। राजयोग तो इसने ठीक है करता है, पर इसको टचिंग भी बाबा ने मुझे दी थी, पर इसको हार्ट की बीमारी का पता ही नहीं था, इसको अनुभव की अथॉरिटी कैसे बनेगा। खूब योग करे ठीक हो जाएगा, एक महीने बाद मुझे रिपोर्ट देना, बाबा का मैसेज दादी के द्वारा आया। तो मैंने क्या हॉस्पिटल से एक महीने छुट्टी ले ली और मैंने खूब मुरलियां पढ़ना शुरू किया, योग करना, कमेंट्री से योग करना शुरू किया। मैं जैसे हम कहते ना, मैं अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, ऐसे ऐसे सूक्ष्म वतन में जा रही हूँ, बाबा के पास गई, बाबा ने मुझे प्यार किया, बाबा ने हार्ट का कैसे ऐसे किया, है ना, कहते ना जैसे हम लोग करते हैं, मस्तक पे हाथ रखा, वरदान हाथ रखा। तो मैं सारा साधन करना शुरू किया, कमेंट्री लगा देता था और बीच में कभी मुरली पढ़ता, फिर कमेंट्री लगाता, फिर ऐसे करता शुरू, ज्यादा ज्यादा मैंने 8 घंटे के बाद 9-10 घंटा भी योग किया, क्योंकि छुट्टी ले ली थी, सारा सारा दिन बैठ के योग किया। तो मेरे को तो कुछ फायदा नहीं हो, फिर भी नींद नहीं आए, फिर भी छाती में दर्द, फिर भी रेगुलर हार्ट बीट। महीना भर बीत गया तो मैं दादी के पास फिर गया, दादी बाबा ने कहा था 1 महीने बाद रिपोर्ट देना, तो मैं गया, मैंने कहा दादी मेरे को कुछ कहते कैसे अब कैसे लगता है गुप्ता जी, मैंने दादी अभी भी नींद नहीं आई है, 1 महीना फिर हो गया, मैं सोया नहीं हूँ, और देखो कहते आंखें तो आंख कैसी लग रही हैं। तो मैं दादी मैं क्या करूँ, मैं मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो दादी के पास गुजरा, दादी फिर सुबह सुबह आके बैठ जाते, दादी ना यहीं पर यहीं बैठे होते थे मुरली के बाद, मुरली के बाद दादी आ जाती थी, गुल जब बाबा से पूछो, बाबा ने कहा था 1 महीने बाद पूछना बताना, इसको कुछ फायदा नहीं हुआ अभी क्या करे। तो दादी अगले दिन फिर मैसेज लेके आई, तो दादी बैठी थी, मैं मुरली के बाद गया तो दादी ने कहा गुप्ता जी आओ मेरे कमरे में आओ, मेरे को बड़ी गुजरा दादी अपने कमरे में ले गई, और फिर दादी ने बिठाया मुझे, वहां पे एक सोफा था, मैं सोफे पे बैठ गया, दादी बेड पे ऐसे बैठ गई, बेड यहाँ था ना ऐसे, दादी का जो बेड था यहीं पे इसी यहीं पे। तो दादी ने फिर बताया, दादी कहती गुप्ता जी बाबा ने कहा जो जिस विधि से राजयोग करते हो गलत है। तो मैंने कहा दादी ये तो जैसे करते ना हम विजुलाइज करते हैं, ऊपर जाते हैं बाबा के पास, ऐसे करते हैं ऐसे, आप कैसे करते हो। मैं दादी तो बाबा ने तो कभी नहीं कहा विजुलाइज करो, बाबा ने तो कहा रिवाइज करो रियलाइज करो, रिवाइज करो रियलाइज करो, सच्चे दिल से महसूस करो जो बाबा मुरली में कहता है, सच्चे दिल से महसूस करो, और महसूस करोगे तो परिवर्तन होगा। तो मैंने कहा दादी कैसे महसूस करें। फिर दादी ने कहा बाबा ने कहा कि ये जो बाबा के जो महावाक्य है ना मुरली के, इस मुरली के एक महावाक्य को, एक महावाक्य को जब पढ़ते हो तो देखो ये अंदर से महसूस, उसको कैसे महसूस कर, सच्चे दिल की लगन से, सच्चे दिल के स्नेह से इस मुरली के महावाक्य को देखो, कौन कह रहा है, किसको कह रहा है, क्यों कह रहा है, ये बाबा का मैसेज है। कौन कह रहा है, किसको कह रहा है, क्यों कह रहा है, और आप अपने लिए समझो कौन कह रहा है, परमात्मा कह रहा है, दिलाराम कह रहा है, क्योंकि आपको हार्ट की रिसर्च करनी है, किसको कह रहा है, जिसने हजारों पेशेंट को ठीक करना है, लाखों पेशेंट्स को ठीक करना है, दिल हार्ट के पेशेंट, उसको कह रहा है, उसको सिखाने के लिए कह रहा है। इसमें से हर बात किसके लिए कह रहा है, उस आदमी को कह रहा है, उस आत्मा को कह रहा है जिसको हजारों लाखों सारे विश्व में ये बाबा का मैसेज देना, उस आत्मा दादी मुझे ऐसे बता रही। और क्यों कह रहा है? क्योंकि वो अनुभव की अथॉरिटी बन जावे, उसको अनुभव हो जावे, महसूस हो जावे कि ये बात ऐसी है। जैसे आज ही की मुरली है, मीठे बच्चे स्वीटेस्ट बाप आया है स्वीट बनाने, तुम्हें देवताओं समान स्वीट और स्वीट बनना और बनाना है। दादी ने मुझे मुरली का पॉइंट पढ़ के सुनाया। तो बाबा मीठे बच्चे किसको कह रहा है? अभी के बच्चे तो मीठे नहीं है, कौन है मीठा? परम धाम वाला जो अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप है ना बाबा, उसको देख के, आपका वो स्वरूप देख के मीठे बच्चे कह रहा है। तो पहले तो वहां टिक जाओ, राइट? सच्चे दिल के स्नेह से कौन कह रहा है, किसको कह रहा है? आत्मा को कह रहा है, डॉक्टर को नहीं बोल रहा है, सतीश गुप्ता को नहीं बोल रहा है, किसको बोल रहा है? उस अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप वाली आत्मा को बोल रहा है। सुनो जब मुरली कैसे, ये देही मानी स्थिति है, राइट? देही मानी से कैसे बनेगी, बाबा सिखा रहा है कि उसमें टिक जाओ। फिर स्वीटेस्ट बाप, स्वीटेस्ट का मतलब क्या है? स्वीट का मतलब क्या होता है? मीठा। मीठा माना क्या? मीठा माना क्या? मीठा माना सतो प्रधान। बाबा ने कहा स्वीट का पहाड़ है बाबा, स्वीटेस्ट माना। और उस दिन एक्चुअली यही मुरली थी, मैं आपको बताऊं तो उसमें था, इसमें थोड़ा मीठे बच्चे चेंज किया हुआ, उसमें था पहली मुरली आई थी बाबा मीठे बच्चे, बाबा स्वीट का पहाड़ है, और तुम्हें बाप देवता है मीठे हैं, तुमको देवताओं समान मीठा बनना है, ये लाइन थी। ये थोड़ा लाइन चेंज की हुई है, यही मुरली थी उस दिन, है ना? है ना? और मैं भी आज आपके सामने वही बात कर रहा हूं। तो दादी ने कहा तो स्वीट का पहाड़ का मतलब क्या है, सोचो, मन रिवाइज, मन 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 ही मन में रिवाइज करो, स्वीट का पहाड़ क्या होता है और स्वीट क्या होता है, स्वीटेस्ट क्या होता है, तो सोचो, इसको रिवाइज करो, 5-6-10 बार रिवाइज करो तो बुद्धि में आना लगेगा, है ना? सच्चे दिल के स्नेह से करो। तो मैंने कहा तो वो स्वीट का पहाड़ और देवता स्वीट, इसका मतलब क्या है? स्वीट का पहाड़ माना वो तो सागर है 7 गुणों का, और देवताएं सतो प्रधान है, 7 गुण भरपूर है। दादी कहते बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक कहा। तो बाबा स्वीट का पहाड़ है, बाबा 7 गुणों का सागर है, और तुम कौन हो? सतो प्रधान, देवताएं सतो प्रधान है, तुम्हें भी सतो प्रधान बनना है। तो ये कौन कह रहा है, किसको कह रहा है, क्यों कह रहा है? तुम्हें भी सतो प्रधान बनना है। फिर सच्चे दिल की लगन से क्या करो? चिंतन करो। चिंतन किस बात का करो? इस मुरली में बहुत सारे राहत, ये मुरली कितने लोगों के लिए है? ये 95 की बात है, तब 3-4 लाख स्टूडेंट थे बच्चे बाबा के घर में, तो 96 की बात है ना, 97 की बात है, तब 3-4 लाख रेगुलर स्टूडेंट थे। तो बाबा 4 लाख बच्चों को कह रहा है, ये 4 लाख बच्चों के हर बात का, हर प्रॉब्लम का आंसर है, हर एक के लिए अलग अलग महत्व है। तो इसमें गुह्यता बहुत है, गहराई है। आपके लिए क्या गहराई है, दूसरी आत्मा के लिए क्या गहराई है, उसके लिए क्या गहराई है, उसके लिए अलग अलग है। पानी, किसको पानी चाहिए तो पानी 300 फुट पे है, कुछ और चीज चाहिए तो कुछ और, पत्थर चाहिए तो पत्थर 50 फुट पे है, है ना? किसको क्या चाहिए? पत्थर चाहिए तो 50 फुट पे, 10 फुट पे ही पत्थर निकलाएगा, किंतु पानी चाहिए तो कहां जाना पड़ेगा, 300 फुट नीचे जाना पड़ेगा। तो किसको क्या चाहिए, उस गहराई में जाओ, गुह्यता। तो मुरली के एक महावाक्य में सच्चे दिल की लगन से, लगन लगानी पड़ती है, खोदने के लिए क्या करना पड़ता है, लगन, ऐसे तो ना निकलाता ऊपर, लगन से खोदो, मतलब चिंतन करो। तो बाबा दादी ने कहा खोदो, मतलब उसकी चिंतन करो, गुह्यता ढूंढो, क्या गहराई मेरे लिए, क्या गहराई है मेरे लिए, इसमें क्या रहस्य है, क्या राज है ना? इस महावाक्य में, हर महावाक्य में कोई ना कोई राज है, हर महावाक्य में कोई ना कोई रहस्य है, कोई ना कोई गुह्यता है, और उसमें खो जाओ, मगन हो जाओ। तो इसमें मगन हो जाओ। तब मैंने मुरली पढ़नी सीखी, कितने साल बाद, 11 साल के बाद, है ना? तो उसमें खो जाओ। फिर क्या होगा, जब बाबा से लगन लग गई ना, मगन हो गए ना, फिर मन बुद्धि की एकाग्रता के साथ क्या करो, मंथन करो, फिर मंथन, बाबा साथ में आ गया, फिर मंथन करो, किसका, महीनता से मंथन करो और बारीक पीसो। तो महीनता से मंथन करोगे ना तो क्या आएगा, क्या आएगा, सूक्ष्मता प्रकट होगी। मंथन करेंगे सागर में क्या होता है, क्या निकलता है, पहले जहर निकलता है, फिर क्या निकलता है, अमृत निकलता है। तो पहले जहर प्रकट होगा, जहर माना तुम्हारी कमी कमजोरी प्रकट होगी, तुम्हारे अंदर क्या कमी, तुम्हारी आर्टरी ब्लॉक क्यों हुई, तुम्हारे हार्ट में दीवारें मोटी क्यों हुई, तुम्हारा सांस क्यों नहीं आता है, राइट, तुम्हारा योग वत्ता क्यों नहीं है। तो पहले जहर निकलेगा और जहर को मुझे दे दो, ठीक है, किसको देना जहर, बाबा को दे दो। फिर मक्खन निकलेगा तो क्या क्या करोगे, फिर मक्खन निकला ना, सूक्ष्मता माना, सूक्ष्मता क्या निकली, पवित्रता, फिर पवित्रता आएगी अंदर, उस मुरली से, उस महावाक्य से आपके जीवन में शुद्धता आएगी, पवित्रता। अपने को आत्मा समझ के दूसरे को भी आत्मा दिखना शुरू करोगे। जिसके प्रति तुम्हारे मन में कोई ईर्ष्या द्वेष पैदा होती है ना, कुछ भाव पैदा होता है, ये मेरे को ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों कहती है मेरे को, वो ऐसा क्यों करता है, उसके प्रति शुद्ध भाव, कर्मों का हिसाब किताब आएगा, जो हुआ अच्छा हुआ, मैंने किया था, इसने वापस किया, कोई बात नहीं, ब्याज के साथ वापस किया, कोई बात नहीं, ब्याज तो देना ही पड़ता है, नहीं तो दस, चलो मैंने दो बार किया था, इसने 20 बार किया, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, 20 बार और बाकी, अच्छा कोई बात नहीं, करो, राइट। तो इस तरह से सूक्ष्मता प्रकट हुई, पवित्रता पैदा हुई, शांति पैदा हुई, पास को फुल स्टॉप लगाया, बिंदी बन के उस बिंदी बाप से कंबाइंड हो गए। तो ये तरीका है दही मानी स्थिति बनाने का, नहीं तो क्या होता है, दही मानी स्थिति बनती है क्या, तो पवित्रता पैदा, शांति पैदा हुई, शांति पैदा हुई तो क्या हुआ, प्रेम, फिर आपस में उस व्यक्ति के प्रति जो तुम्हारी गाली देता है, इंसल्ट करता है, उसके प्रति भी क्या होगा, एक्सेप्ट करना शुरू कर दोगे। अब एक्सेप्ट नहीं करते हो, हार्ट की बीमारी क्यों हुई, तुमने एक्सेप्ट करना बंद कर दिया, ये मेरे जीवन में क्यों आए, इसका ऐसा छोड़ के भाग जाओ यहां से, क्या फायदा है यहां रहने का, बाबा के घर में भी ऐसा होता है क्या, होता है ना, कई बार ऐसी बातें होती है, यहां के भी हम सोचते हैं, यहां के लड्डू थोड़े ना मिलते ज्यादा, यहां भी तो घर्षण होता, नहीं होता, नहीं होता घर्षण, यहां भी हिसाब किताब है ना, ये भी तो पूरा पुराना परिवार है ना। अब हम शांति बन 1500 लोग रहते हैं, तो 1500 का परिवार है, और सत्युग में भी आना है उस 1500 के परिवार को, सबको ही आना है, कोई उनके साथ जो मेरे पिछले जन्म कर्मों के हिसाब मैंने कुछ गलत किया होगा, तो वो भी इस जन्म मेरे साथ गलत करेंगे ना, नहीं करेंगे, ब्याज के साथ करेंगे, मुझे सहन करके समाना पड़ेगा, संभालूंगा तो हिसाब किताब चुप्त हो जाएगा, रिएक्शन की तो डबल हो जाएगा, सुना। तो ये सूक्ष्मता पवित्रता ऐसे पैदा नहीं होती है कि हमने ऊपर गए सूक्ष्म वतन में, पवित्रता आ गई, शांति आ गई, प्रेम आ गई, प्रैक्टिकल में पवित्रता लानी पड़ती है। इसी को बोलते मनन चिंतन मंथन, क्या करना पड़ता है, मंदराचल पर्वत और वासुकी नाग है ना, एक तरफ आसुरी शक्ति, एक तरफ देवता, देवता ही शक्ति। वासुकी नाग का मतलब क्या है, मन को वश करके है ना, मंद्र मन को स्थिर करके, और फिर मंथन करो, तो मंथन करो जहर निकलेगा है ना, और जहर बाबा को देते, लिख लिख के देते जाओ। तो बाबा ने, दादी ने कहा, बाबा ने कहा तुम्हारे लिए जो भी मन में आता है लिख लिख के देते जाओ, लेयर वाइज गंदगी जमा, लेयर वाइज। मन क्या है, एक डस्टबिन है, कैसी, गिफ्ट पैक में बंधी हुई, उसमें लेयर वाइज गंदगी जमा है, राइट, तब वो निकलेगी, तो पवित्रता पैदा होगी, फिर शांति पैदा होगी, प्रेम पैदा होगा, फिर संतुष्टता आएगी, संतुष्टता आएगी तो अतिंद्रिय सुख की अनुभूति होगी, बाप से तब मिलन होगा, तब आनंद ना, अब तुम बियॉन्ड चले जाओगे, लवलीन स्थिति आएगी, तब तीसरी आंख खुलेगी आनंद आने के बाद, सत्य को प्रकट शक्ति आएगी, तब यथार्थ निर्णय करने की शक्ति आएगी, सही तब विस्तार को सार बनाने की शक्ति, तब मनबुद्धि ऊपर जाके बाप दादा की गोद को महसूस करेगी, तब सब संबंधों का अनुभव होगा, तब जाकर के वहां से मनबुद्धि को समेट के परम धाम घर में अश्री बन के अश्री बाप से कंबाइन होंगे, तब क्या वो करंट आएगी, करंट आएगी तो ये हार्ट की दीवारें पतली होंगी, ठीक है, सुना, तब हार्ट की दीवार, सब सांस आएगा, तब खून का दौरा शुरू होगा, ये बाबा मुझे बता रहा है ऊपर से, है ना, दादी के द्वारा, मतलब दादी ने कम से कम आधा घंटा मेरे को लगाया होगा समझाने में, बाबा का मैसेज कमरे में लेके गई ना, तो फिर मुझे याद है, तो ऐसे फिर मंथन सूक्ष्मता पैदा होगी, और फिर गुप्त स्थिति बनती जाए, गुप्त माना अंदर अंदर गुप्त गुप्त पुरुषार्थ करते रहना, और फिर सारा दिन सिमरण माना। सिमरण का मतलब क्या है? जो मक्खन निकला ना, सारा दिन श्वासों श्वास उसको यूज करते जाना, अंदर अंदर कार्य कर्म योगी बनके उसको कार्य में लगाना। तो यह है मनन, चिंतन, मंथन, सिमरण। इसको बोलते देही मने स्थिति। तो जितना देही मने, जैसे आपने गाजर का रस निकाला, गाजर को रस निकालने क्या करते हो? पहले धोते हो, फिर छीलते हो, फिर उसके पीस बनाते हो, फिर क्या करते हो? उसमें डालते हो। जो जूस निकला ना, जूस क्या है? आत्मा की स्थिति। पवित्रता आई, पवित्रता का प्रवाह शुरू होता है जीवन में, प्रैक्टिकल शांति जीवन में आती है, प्रेम खुशी आनंद आंखों से दिखाई देती है, बोल में दिखाई देती है, कानों में जाती है, रोम रोम से पवित्रता शांति प्रेम सुख आनंद शक्ति में। इसको बोलते हैं आत्मा की स्थिति। जब सातों गुणों से भरपूर हो जाते हैं ना, तो विधेय स्थिति है। तब सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद का महसूस होती है। विधेय स्थिति में दो चीजें हैं, एक तो अतिंद्रिय सुख, बाप दादा की गोद में पाने का सुख मिला, पाना था सो पाले, काम क्या बाकी रहा, वो तो है स्वीट साइलेंस, मिलन का सुख, भिन्न भिन्न संबंधों के मिलन का सुख। और जब सरल संबंधों के संबंध के सार वाली याद आ गई ना, तो आनंद की स्थिति बनती है, लवलीन स्थिति बनती है, वो है डीप साइलेंस। उसमें विचार नहीं चलते हैं, बस लवलीन खोया हुआ है। और उसके बाद क्या होता है, जब वो स्थिति आ जाती है, तो वहां से अश्री बन के परमधाम घर में अश्री बाप से कंबाइंड, अब विचार चलने बंद हो गए, बैटरी चार्ज होनी शुरू हो गई, उसको बोलते डेड साइलेंस, वो भरपूर स्थिति है, राइट। ये है साइलेंस की स्थिति। तो देही मन स्थिति से क्या बनती है? साइलेंस। साइलेंस का अनुभव करते करते सातों एनर्जी जब भरपूर हो जाती, भरपूर होने लगती है, तो सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद की अनुभूति, वो क्या है? स्वीट साइलेंस। जब वहां से सातों सभी सर्व संबंधों की अनुभूति हो गई, तो फिर सार आ जाता है, सर्व संबंधों की सार वाली याद आती है, तो लवली स्थिति आनंद की स्थिति आ गई, और उसके बाद डेड साइलेंस, वहां विक्रम विनाश होते हैं, तो सहन करने की शक्ति आ जाती है। मैंने दादी दर्द होता है, तो दादी के दर्द खत्म हो जाएगा, है ना, फिर दर्द खत्म हो, फिर एंडोर्फिन निकलेंगे, फिर आपके शरीर में परिवर्तन आएगा, फिर समाने की शक्ति आती है, फिर सामना करने की शक्ति है, फिर सहयोग करने की शक्ति आती है, फिर सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का बैलेंस होता है, फिर हीलिंग एनर्जी आती है, फिर ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली योग अग्नि पैदा होती है, और उससे विक्रम विनाश होते हैं। सुनो, तो ये है कौन सी, क्या हो गया ये अभी? तो सचमुच मुझे याद है, तीन दिन के बाद एक दिन मैंने अभ्यास किया, उस दिन मैंने 69 से लेके 96 तक की मूलियां खरीदी, यही इसी दुकान से, यहां पे दुकान है ना, दुकान मुरली पे, मैंने एक एक मुरली 6-6 घंटे लगते थे पढ़ने मुझे, और 10-10 बार लेटर लिखता था बाबा को, 10-10 बार लेटर लिख के मैं एक बात बाबा को लिखता था, एक एक बात निकालता था, और तब जाके 3 दिन के बाद मुझे नींद आई, 4 महीने के बाद नींद आई। इसे बोलते हैं देही मन स्थिति का अभ्यास, है ना, ना? देही मन स्थिति का मतलब क्या है? ये देही मन स्थिति है। तो चलते फिरते उठते बैठते श्वासों श्वास बाबा की मुरली का मनन चिंतन मंथन सिमरण करना, और उससे आत्मा की स्थिति बनती है। इसलिए क्या है, मेरे दिल में क्या, मेरे पास क्या रहती है ना, उस दिन से मैंने मुरली जेब में रखनी शुरू की है। उसके पहले मुरली जेब में, पहले तो मुरली मिलती नहीं थी, कागज पे मुरली लिखते थे, मुरली लिख कागज पर लिख के फिर जेब में रखते थे, और सारा दिन उसी में लगे रहते थे। फिर बाबा ने सीखा तो फिर ये गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट पास हुआ, उसके बाद पास हुआ, और पास होके फिर हम, फिर इको में दोबारा इको कराया 97 में सितंबर में, तो देखा हार्ट नॉर्मल हो गया था, हार्ट की दीवारें नॉर्मल हो गई। तो ये है सही विधि से योग करें ना, देही मन स्थिति, इस देह में रहते हुए देही मन, देही बन करके हर काम करना, चलते फिरते उठते बैठते। और ये मुरली का एक लव लेटर बाबा का सुबह मिला, और सोने के पहले पोता मेल, फिर दादी ने बताया पोता मेल देना होता है रोज का, एक लव लेटर तुम लिखो, लाइन वाइज लिखो कि बाबा आपने आज ये कहा था ना, मैंने इतना परसेंट किया, आपने ये कहा था ना इतना परसेंट किया, आपने ये कहा था इतना परसेंट किया, ये आपने कहा था इतना परसेंट किया, चेक करो। तब 11 साल के बाद मैं पुरुषार्थ करना आया मुझे, सुना, ये तो उसके पहले पुरुषार्थ करना नहीं आता था। तो आप भी ऐसे करेंगे? यस, ओम शांति।
सभी ने सीख लिया कैसे अपनी स्थिति देही अभिमानी बनानी है। एक हाथ हिलाकर धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।